लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि ख्रिस्तीय एवं अन्य सभी धर्मों के अनुयायी तथा समस्त शुभचिंतक लोग विश्व में शांति और न्याय को बढ़ावा दें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है एक मुलाकात कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुतता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, एक मुलाकात कार्यक्रम के अंतर्गत माननीय विशप आनंद जोजो के साथ हुई भेंट वार्ता को प्रस्तुत कर रहे हैं। नया साल नई आशाओं का पैगाम लेकर आया है। यह मौका है खुद को, परिवार को और समाज को बेहतर बनाने का। नया साल हमारे लिए क्या लेकर आएगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि नए साल में हम क्या करने वाले हैं। झारखंड के हजारीबाग धर्म प्रांत के लिए यह साल खास है, क्योंकि इस साल धर्म प्रांत की रजत जयंती मनाई जाएगी। धर्म प्रांत ने रजत जयंती की तैयारी हेतु कई कार्यक्रमों का आयोजन किया है। हजारीबाग धर्म प्रांत की स्थापना 1 अप्रैल 1995 को हुई थी। इसके प्रथम धर्माध्यक्ष थे माननीय बिशप चार्ल्स सोरिंग येसु समाजी। उनके सेवानिवृत्त होने के बाद माननीय बिशप आनंद जोजो हजारीबाग के धर्माध्यक्ष नियुक्त हुए, जो वर्तमान में बड़ी कर्मठता के साथ इस कलीसिया का नेतृत्व कर रहे हैं। हजारीबाग धर्म प्रांत में करीब 40,945 कैथोलिक विश्वासी हैं। पल्लियों की कुल संख्या 24 है। यह छोटी कलीसिया विश्वास पर आधारित है, अतः विश्वास का नवीनीकरण ही रजत जयंती की मुख्य विषय वस्तु है। इस नवीनीकरण की शुरुआत परिवारों से की जाएगी, किंतु पुरोहित, धर्म सामाजी एवं लोक धर्म भी इसमें सहभागी होंगे। हजारीबाग धर्म प्रांत के माननीय धर्माध्यक्ष बिशप आनंद जोजो इस भेंट वार्ता में बतला रहे हैं कि वे धर्म प्रांत में किस तरह रजत जयंती मनाने वाले हैं और किस तरह से नवीनीकरण लाना चाहते हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है बिशप आनंद जोजो के साथ एक भेंट वार्ता। उनके साथ बात करें सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की।
हमारे कैथोलिक कलीसिया का सबसे मुख्य बिंदु है विश्वास। कलीसिया विश्वास पर ही आधारित है। जितना हम विश्वास में मजबूत बनेंगे, उतना ही ईश्वर का आशीर्वाद भी हमारे जीवन में, हमारे परिवार, हमारे समुदाय, समाज में, हमारे कलीसिया में होगी। तो इसी के तहत मैंने अपने धर्माध्यक्ष कार्य को शुरू से ही इस पर बहुत अधिक पहल करने का प्रयास किया है कि सभी विश्वासियों के विश्वास का नवीनीकरण हो, और इसके लिए हमारे पुरोहितों को, हमारे धर्म समाजी भाई बहनों को, लोक धर्मियों को भी इसी दिशा में मैं अगुवाई करने का प्रयास कर रहा हूं। और अभी हम लोग धर्म प्रांत के जुबली वर्ष में, रजत जुबली वर्ष में प्रवेश कर गए हैं, और इसमें भी मैंने इसी विषय को प्रमुखता दिया है, अर्थात हमारे विश्वास का नवीनीकरण हो। और इसके लिए हमने योजना बनाई है कि हरेक धर्म प्रांत के हरेक पल्ली, उसके हरेक गांवों में सभी परिवार और समुदाय के लोगों के बीच में विश्वास का नवीनीकरण हो। और इसके लिए हमने त्रिदिवसीय आध्यात्मिक साधना का आयोजन किया है, और इसके लिए सभी पुरोहित, धर्म समाजी भाई बहने, धर्म बंधुगण और लोक धर्मी एक साथ मिलकर हम लोग विश्वास का नवीनीकरण करेंगे। और यही बात पूरे संपूर्ण पल्ली में भी होने की आवश्यकता है, भिखारियत में होने की आवश्यकता है और पूरे धर्म प्रदेश में होने की आवश्यकता है। इसकी अवधि हम 2 जून से अक्टूबर 2020 तक करेंगे, और यही उसका अंत नहीं होगा, लेकिन ये नवीनीकरण का जो कार्य है वो निरंतर चलता रहेगा। इसमें हमने एक अच्छा कदम उठाया, जिसके तहत हम लोग हमारे धर्म प्रांत के लिए एक नई कार्य योजना तैयार करने वाले हैं और इसके लिए सबके सब एक साथ मिलकर हमने विचार विमर्श किया है। यह अगस्त 7 से 10 तक ठहराया गया था और इसमें किस प्रकार अगले 25 वर्ष यानी 25 वर्ष तो हमने पूरा किया है लेकिन अगला 25 वर्ष यानी कि 50वें वर्ष की तैयारी किस प्रकार हम करेंगे। तो इनमें बहुत सारी बातें हुई और मुख्य रूप से यही उभर करके आया कि अगला 25 वर्ष में हमारा प्रयास होगा कि हमारा परिवार विश्वास में येशु ख्रिस्त के विश्वास पर और अधिक सुदृढ़ बने और वो परिवार आध्यात्मिक तौर तरीके से इस प्रकार सुदृढ़ बने कि वह एक सुसमाचार का प्रचारक बन जाए यानी सभी लोगों को सुसमाचार के अनुसार जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित कर पाए। इस प्रकार का विश्वास हम परिवारों में पैदा करना चाहते हैं और इसके तहत कई प्रकार के ठोस कार्य भी लिए गए हैं। जैसे पूरे धर्म प्रांत में हमने एक परिवार परामर्श केंद्र और उसके तहत हमने धर्म बहनों को बुलाया है और उसमें हमारे पुरोहित भी हैं, लोकधर्मी भी हैं। ये परिवार परामर्श केंद्र के द्वारा सभी परिवारों तक हम पहुंचने का प्रयास करते हैं और इन परिवारों को हम विश्वास में ईश्वरीय प्रेम में और एकता में और अधिक सुदृढ़ बनाना चाहते हैं और इसके तहत सबके सब या स्वीकार करते हैं कि परिवार ही एक पहला एक मुख्य पृष्ठभूमि होना चाहिए जिसके आधार जिसको बलिष्ठ करके जिसको सुदृढ़ करके हम और भी अन्य जो संगठन है उनको हम मजबूत कर सकते हैं।
माननीय स्वामी जी अपने विचारों को हमें साझा करने के लिए धन्यवाद। नए साल एवं रजत जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।
आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटक झूठी शान। लेखक हैं माइकल होजेस। श्रोताओं, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग झूठ बोलकर और अपनी शान दिखाकर लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं। वे झूठी शान और दिखावा की जिंदगी में खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं, अपनी क्षमता या सामर्थ्य को भूलकर अमीरों की नकल करते हैं,
अमीरों के पास जैसी सुख सुविधाएं हैं, वैसी ही सुख सुविधाएं प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। पहनावे और बोलचाल में भी उनकी नकल करते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें कर्ज ही क्यों न लेना पड़े। दरअसल नकल करने की यह प्रवृत्ति सभी लोगों में पाई जाती है, परंतु जो लोग अपने सामर्थ्य को भूलकर अंधानुकरण करते हैं वे बाद में बहुत कष्ट पाते हैं। आडंबर युक्त झूठा जीवन कभी सुख नहीं देता। झूठी शान और बड़पन दिखाने का पोल एक न एक दिन खुल ही जाता है और दूसरों के सामने अपमानित होना पड़ता है। जो सच है, जो सहज सरल और वास्तविक है, वही आंतरिक सुख और संतुष्टि देता है। इससे इज्जत कम नहीं होती, बल्कि सच्चाई की लोग कद्र करते हैं। झूठा दिखावा और झूठा बड़पन कुछ देर तो खुशी देता है, परंतु इसका अंत दुखद होता है, इसलिए इससे बचकर रहना चाहिए। आशा है आज का नाटक इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो आइए सुनते हैं माइकल होजेस का लिखा नाटक झूठी शान।
आज मेरे घर से फोन आया था।
अच्छा, तो एक काम करो, एक रिक्शा कर लो और उसमें लाउड स्पीकर लगवा कर पूरे शहर में ये बोलते हो घुमा दो कि मेरे घर से आज फोन आया था।
तुमको हर वक्त मेरी बातों में कॉमेडी क्यों नजर आती है?
क्योंकि तुम्हारी हरकत ही ऐसी होती है। अच्छा बताओ, क्या हाल है तुम्हारे घर के?
सब बढ़िया है। कोई ऐसा वैसा घर है क्या?
अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। अब सब बढ़िया है तो फिर क्या सुनना?
मगर तुम्हें सुनना पड़ेगा सागर।
अब जो कुछ भी सुनाना है जल्दी से सुनाकर मेरा पीछा छोड़ो, मैं अब और कॉमेडी के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ।
पता है मेरे भाई ने कार खरीदी है। कार?
ठीक है, उसे बधाई दे देना।
अरे, कार की बधाई कोई ऐसे देता है क्या?
अब जैसी कार होगी उसकी बधाई भी तो ऐसी होगी ना, सेकेंड हैंड कार की सेकेंड हैंड बधाई।
क्या कहा तुमने? सेकेंड हैंड कार? सेकेंड हैंड कार खरीदे मेरे भाई के दुश्मन।
तो ठीक है, तुम्हारे भाई के दुश्मनों को बधाई दे देना।
अरे, मेरे भाई ने नई कार खरीदी है, नई ब्रांड न्यू कार।
मुझे पता है तुम्हारे घर वाले और तुम सब कितना झूठ और कितना सच बोलते हो।
क्यों? क्या मेरा भाई नई कार नहीं खरीद सकता?
मुझे सब पता है, ये बात उससे कहना जो तुम लोगों को जानता ना हो। तुम सबको तो अपनी झूठी शान बघारने और दिखाने की आदत है।
इसमें क्या है कि झूठी शान?
पुरानी कार को नई बताना ये झूठी शान नहीं तो और क्या है?
तुम तो हमेशा कभी मेरी या मेरे घर वालों की तारीफ मत करना, बस हमेशा मीन में ही निकालते रहना।
जैसा तुम्हारा गाना होगा वैसे ही तो मेरा बजाना होगा।
तुम तो कभी किसी बात को सीरियसली मत लेना।
क्या बात है सागर, कुछ परेशान से लग रहे हो?
हाँ यार, बात ही परेशानी की है।
क्या मैं जान सकता हूँ?
इसमें छिपाने वाली क्या बात है यार, तुम तो मेरी बीवी को जानती हो।
क्यों यार, भाभी ने ऐसा क्या क्या किया है जो तुम इतने परेशान हो रहे हो?
वो करेगी क्या, उसमें एक ही बात बहुत बुरी है, अपनी झूठी शान बघारने और बताने की।
यह आदत तो अधिकतर औरतों में किसी बीमारी की तरह पाई जाती है, इसमें इतना परेशान होने की बात क्या है?
परेशानी यही है कि तुम्हारी भाभी अपनी झूठी शान बघार भी देती है और झूठी शान दिखा भी देती है, लेकिन जब पोल खुलती है तो उस पर तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे बेहद शर्मिंदगी उठानी पड़ती है।
तो तुम भी भाभी जैसे क्यों नहीं हो जाते हो? उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता तो तुम क्यों इस फिक्र में मजनू हो जाते हो?
ये तुम क्या कह रहे हो यार?
मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ यार, तुम भी एक बेशर्मे की खिसियानी हंसी हंसकर अपने आप को झूठी शान से अलग कर लिया करो। और क्या,
ये तो तुम्हारी भाभी ही कर सकती है, मुझसे ये सब नहीं होने वाला।
तो फिर तुम क्या चाहते हो?
कोई ऐसा आइडिया बताओ महेश भाई कि तुम्हारी भाभी की ये आदत हमेशा के लिए छूट जाए।
अच्छा, ऐसी बात है, लेकिन उस आइडिया का रिएक्शन अच्छा भी तो हो सकता है और बुरा भी।
तुम साइड इफेक्ट की परवाह मत करो, वो मैं सब संभाल लूंगा, तुम तो आइडिया बताओ बस आइडिया।
तो सुनो, अब कभी जैसे ही भाभी किसी के सामने अपनी शान दिखाए वैसे ही उनके सामने सच कह दो बस। लेकिन हाँ, मौका और कहने का अंदाज जबरदस्त होना चाहिए, वरना खेल बिगड़ जाएगा।
ये आइडिया फ्लॉप तो नहीं है ना?
इसको आजमाने की शुरुआत तो तुमसे ही करनी होगी।
मरता क्या ना करता, चलो मैं ही आजमाता हूँ।
मेरी हार्दिक शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है।
धन्यवाद दोस्त।
दरी का बहुत बढ़िया काम है। मेरे पास भी ऐसी 8-10 साड़ियाँ थी, मैंने अपने लिए 2 रख कर बाकी सारी साड़ियाँ अपने रिश्तेदारों में बांट दी।
अच्छा, तुम तो बड़ी दिलेर हो भाई।
तुम ये बात कर रही हो? अरे मैं तो हर महीने कई साड़ियाँ लेती हूँ। अब क्या होता है कि जो साड़ी दुकान में बहुत अच्छी लग रही होती है, घर पर उसका आकर्षण बिल्कुल खत्म हो जाता है।
फिर उस साड़ी का क्या करती हो तुम?
करना क्या है, फिर एक दो बार पहनकर मैं उसे अपनी काम वाली बाई को दे देती हूँ, सिंपल।
हे भगवान, इतनी नई नई साड़ी तुम बांट देती हो।
ज्यादा पहनकर और अलमारी में रखकर उनका करना भी क्या है।
बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन फिर भी इतनी महंगी और नई साड़ी।
चलता है सोनी, ये तो अपनी अपनी आदत है।
शीना, शीना। अरे सोनी जी, नमस्कार।
नमस्कार जीजा जी, कहिए कहाँ से आना हो रहा है?
ऑफिस से आते आते बाजार होकर आ रहा हूँ।
अरे आप सुनार के यहाँ गए थे कि नहीं?
क्यों?
क्या क्यों, मेरा हार लाना था ना।
हार? सोने का?
हाँ, सोने का हार लाए क्या?
नहीं, सोने की पॉलिश करने वाला कारीगर छुट्टी पर है।
सोने की पॉलिश करने वाला कारीगर छुट्टी पर है? लेकिन शीना, तुम तो पॉलिश वाले हार की नहीं बल्कि शुद्ध सोने के हार की बात कर रही थी ना।
बात ऐसी है सोनी जी, शीना ने चांदी का एक हार सोने का पानी चढ़वाने के लिए दिया था, लेकिन सुनार का कहना है कि जो कारीगर सोने का पानी चढ़ाने का काम करता है वह अभी छुट्टी पर है, इसलिए शीना के चांदी के हार पर पॉलिश नहीं हो पाई है।
अच्छा, तो ये बात है।
हाँ सोनी जी, बिल्कुल यही बात है।
तो फिर ठीक है। अच्छा शीना, मैं चलती हूँ। अगर तुम्हारी पॉलिश हो जाती है तो मैं तुम्हारे सोने के हार के दर्शन कर लेती। बाय
बाय। नमस्ते सोनी जी।
क्यों, सोनी के सामने सच बोलने की क्या जरूरत थी तुम्हें?
क्यों, तो तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे साथ साथ मैं भी तुम्हारी तरह झूठ बोलकर झूठी शान दिखाऊं?
तुमने सोनी के सामने सच कहकर पता है कितना शर्मिंदा किया है।
अच्छा, तो तुम्हारी पोल खुलने से तुम्हें भी शर्मिंदगी हुई है, तो फिर ऐसा काम ही क्यों करती हो जिसमें तुम्हें नीचा देखना पड़े।
तुम सच कहते हो सागर, आज मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हुई है। मैं कोशिश करूंगी कि आइंदा मैं अपनी झूठी शान दिखाने से पास आऊं।
देखो शीना, तुम किसी के सामने भी अपनी झूठी शान दिखाती रहती हो, लेकिन जब उसे तुम्हारी असलियत मालूम पड़ती है तब उसके सामने तुम्हारी क्या इज्जत रह जाती है। सामने कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन सोचते सभी हैं। किसी को किसी के बारे में सोचने से कोई नहीं रोक सकता। कोई भी किसी के भी बारे में कुछ भी सोचने के लिए स्वतंत्र है।
मैं भी यही सोच रही थी, क्योंकि सोनी जिस तरह से उठकर गई है उसे साफ पता चलता है कि वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी।
उसके बाद भी तुम सिर्फ झूठी शान न दिखाने के लिए कोशिश करने की बात कर रही हो।
ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ सागर कि आज के बाद मैं किसी के भी सामने अपनी झूठी शान कभी नहीं दिखाऊंगी। जिंदगी को उसकी वास्तविकता और सादगी से जीऊंगी।
हाँ शीना, जिंदगी को उसकी वास्तविकता और उसकी सादगी से जीना ही जिंदगी है। झूठी शान और दिखावा एक अवास्तविकता भरी जिंदगी जीना है।
सच्चाई और सादगी से जियो, आराम से जिंदगी जियो।
झूठी शान। अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे अमृता वकील, नम्रता तिवारी, निर्विकार और माइकल होजेस। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।